हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 27। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और कारंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाखय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती युत श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, विषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि मद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 27। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। कुंती महारानी कहती हैं, नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। नमो किंचन वित्ताय निवृत्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय केवल्य पतये नमः। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। शब्दात नमो अर्थात नमस्कार है अकिंचन वित्ताय निर्धनों के धन स्वरूप को, निवृत्त गुणवृत्तये अर्थात प्रपंचों से सदा परे आत्म आरामाय आत्म संतुष्ट को, शांताय परम शांत को, कैवल्यपतये अर्थात अद्वैतवादियों के स्वामी को नमः प्रणाम है। अनुवाद, मैं निर्धनों की धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यदि जीव को, जीव के पास कुछ भी नहीं रहे तो वह, यदि जीव के पास कुछ भी ना रहे तो वह समाप्त हो जाता है। अतएव वास्तव में देखा जाए तो जीव परित्यागी नहीं हो सकता। जीव को कुछ त्याग, जीव जो कुछ त्याग करता है वह और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए करता है। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। एक नौकर अधिक अच्छे काम के लिए अपना काम छोड़ता है। इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ नहीं करता, अपितु कुछ आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी गोस्वामी आदि ने भगवान की सेवा के लिए ही सांसारिक तड़प भड़क का परित्याग किया। सांसारिक दृष्टि से वे महापुरुष थे। ये गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया जिससे उन्हें इससे श्रेष्ठतर उपलब्धि हो सके। भक्तगण सामान्यतः संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल उनके गुह्यतम कोश हैं। श्री सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत ही सुंदर कथा है। उनके पास एक पारस पत्थर था जिसे उन्होंने कूड़े के ढेर में छोड़ दिया था। उसे एक जरूरतमंद व्यक्ति ने प्राप्त किया, किंतु बाद में वह सोचने लगा कि आखिर इसे ऐसे उपेक्षित स्थान में क्यों छोड़ रखा था। अतएव उसने सनातन गोस्वामी से सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा तो उन्होंने उसे भगवान का पवित्र नाम दिया। अकिंचन का अर्थ है निर्धन। यहाँ पर कुंती महारानी पहला शब्द बोल रही है, नामो अकिंचन वित्ताय। उसके विषय में अभी श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने के लिए कुछ भी न हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं दे पाता, क्योंकि वह पहले से ही सारी भौतिक संपत्ति का त्याग कर चुका होता है, लेकिन वह परम धन का अर्थात भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि भगवान ही भक्त का वास्तविक धन होता है। नमो अकिंचन वित्ताय, वित्ताय मतलब धन, यानी कि जो अकिंचन भक्त होते हैं जिन्होंने भौतिक वस्तुओं का परित्याग कर लिया। क्यों परित्याग किया, वो श्री प्रभुपाद जी ने पहले बताया कि जीव एक वस्तु का परित्याग करता है क्योंकि उसे श्रेष्ठ वस्तु चाहिए होती है उससे भी ज्यादा। जैसे बालक अपनी बचपन के टॉयज वगैरह को त्याग करता है ताकि उसे आगे शिक्षा लेनी पड़ती है। अगर कोई एक छोटी नौकरी को त्याग करता है यानी कि वो आगे उससे बढ़ना चाहता है, बड़ी नौकरी चाहता है, उसी तरह जो भगवान के भक्त होते हैं वो भौतिक वस्तुओं के सुख का परित्याग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वास्तविक आनंद किसमें है, भगवान के पवित्र नाम में है। जैसे रूप गोस्वामी ने पारस मणि का भी परित्याग कर दिया था, तो यहाँ पर बता रहे शिला प्रभुपाद जी, क्योंकि भौतिक वस्तुएं नहीं होती हैं भगवान के भक्तों के पास, इसलिए उनको अकिंचन कहा गया। लेकिन उस अकिंचन का धन कौन है, धन वित्ताय मतलब वो भगवान जो है वो उस अकिंचन भक्त का धन होते हैं। और आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन वह परम धन का अर्थात भगवान का दान दे सकता है। अब जिसके पास जो होगा वो उसका दान दे सकता है। भगवान के भक्तों के पास भले ही भौतिक धन नहीं होता है, लेकिन भगवान तो होता है, तो जिससे भी मिलते हैं वो भगवान का नाम दान कर देते हैं। और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, अर्थात वो भगवान का दान दे सकते हैं, क्योंकि भगवान ही भक्त का वास्तविक धन होता है। आगे श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन ना था, अन्यथा वह ऐसे स्थानों में ना पड़ा होता। यह विशेष उदाहरण नवदीक्षित भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जाता जा सके कि भौतिक लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि भौतिक वस्तुओं को भी हम संग्रह करते रहें, लेकिन जब तक हम भौतिक वस्तुओं की आसक्ति को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम आध्यात्मिक आनंद को अच्छे से महसूस नहीं कर सकेंगे। इसी श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भौतिक लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता है। श्री सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने यह उदाहरण हम सब लोगों के लिए प्रस्तुत किया है, क्योंकि हमें वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने वाले थे। अब यहाँ पर बहुत ही खास बात श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सनातन गोस्वामी ने ऐसा किया है, क्योंकि अब पहले ये कहा कि अगर आप हर वस्तु को भगवान से संबंधित करके यदि यूज करते हो तो फिर तब उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता है। कब, जबकि जब वो हर वस्तु को भगवान से संबंधित नहीं देखता है तब अंतर होता है, लेकिन जब सब वस्तुओं को भगवान से संबंधित करके देखता है तो फिर ये भेद खत्म हो जाता है। हालांकि सनातन गोस्वामी जो थे उसको कोई आध्यात्मिक दृष्टि उनके पास थी, और वो हमारी तरह भौतिक दृष्टि नहीं रख रहे थे। यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने वाले थे, लेकिन वो उदाहरण क्या दे रहे थे? ताकि हमको शिक्षा देनी पड़े। यहाँ से यह समझ आ रहा है कि जो गुरु होते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, भले ही वो भौतिक वस्तुओं में अगर यूज भी करेंगे ना उनको, तो भी उनमें उनको कोई आसक्ति नहीं होगी। लेकिन क्योंकि साधारण व्यक्तियों को सिखाना है, इसलिए श्री प्रभुपाद जी कभी भी इस तरह के कार्य नहीं करते थे, कोई भी धन अपने पास नहीं रखते थे, या फिर भले ही वो बड़ी बड़ी जगहों पे जाते थे, लेकिन फिर भी उनका पहनना और ना बिल्कुल सिंपल ऐसे। हालांकि अगर वो करते भी ना, तो भी बड़े बड़े वो चाहते, क्योंकि उन्होंने इतने सारे डिवोटीज बनाए थे, इतने सारे उनके भक्त थे, बहुत सारे मंदिर, वो चाहते तो बहुत बहुत पगड़ियां पहनकर, बहुत बहुत धन अच्छे वाले ड्रेसेस पहनकर, शूज और इत्यादि, वो सब बहुत ज्यादा महंगी महंगी चीजें को यूज कर सकते थे, और उन्हें कोई आसक्ति भी नहीं थी उन वस्तुओं में, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? ताकि जो उनके शिष्य हैं वो उनसे देखें कि हमें किस तरह से भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना है और केवल भगवान के नाम में, भगवान की कथा में आनंद लेना। क्योंकि जैसा जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, तो उनके छोटे जो उनके अंडर में कार्य करते हैं, वो भी ऐसा ही सीखते हैं। अगर वो आनंद ले रहे हैं, अगर श्रेष्ठ व्यक्ति जो है वो ऐसा दिखता भी है ना कि वो भौतिक वस्तुओं से आनंद ले रहे हैं, तो फिर जो उनसे सीख रहे हैं वो तो वही सीखेंगे ना। उनके अंदर तो वो आध्यात्म दृष्टि नहीं होती है, फिर तो उनको तो और भी भौतिक वस्तुओं में आसक्ति हो जाएगी। और आगे श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आध्यात्मिक उन्नति में भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता एक रोड़े का काम करती है। अगर आप आध्यात्मिक में उन्नति करना चाहते हो और भौतिक सभ्यता को अपना रहे हो, भौतिक दृष्टि का विकास हो रहा है, तो समझ जाओ कि ये सबसे बड़ी बाधा है आपकी आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक पद पर उन्नति करने के लिए। ऐसा भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके बाद अनेक भौतिक कष्ट प्राप्त होते रहते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। भौतिक यानी भौतिक कोई भी कामना हो जाती है ना जीव को, यदि भौतिकता में किसी तरह से भी शरीर के रिलेटेड किसी भी वस्तु में यदि आकर्षण उत्पन्न हो गया, क्योंकि आसक्ति जब हो जाती है ना किसी, ध्यायते विषय अनपुंसः संगस्तेषु पजायते। भगवान कहते हैं यदि किसी वस्तु का केवल ध्यान भी किया जाए, तो फिर ये इंद्रियों की मांग बन जाती है, फिर क्या होता है उससे संग प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त होती है। जैसे उसका संग करते, संगा संजायते कामा, और उससे काम उत्पन्न हो जाता है। कामा क्रोधो भी जायते, और यदि काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति भवशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो इसका अगर अपनी खैर मनानी है ना, अगर हमें भावबंधन में उलझना नहीं है, तो सबसे पहला कार्य ध्यायते विषयान् पुंसः, यानी भौतिक वस्तुओं के ध्यान को भी परित्याग करना है। ऐसा नहीं कि हम ये सोचें कि अब तो हम बहुत बड़े भगत हो गए हैं, हम इतना इतना प्रचार कर रहे हैं, सब लोग हमारे अंदर में बैठ के सुन रहे हैं, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई भी वस्तु आसक्ति उसमें नहीं होगी। नहीं, हमें वास्तव में भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना, इंद्रियों को उनके विषय प्रदान ही नहीं करना है। तस्मात तो इंद्रियां यादव, अब भगवान कहते हैं सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो। ये खाली शिष्यों के लिए नहीं है, ये समस्त गुरुजनों के लिए भी है, जो भले, क्योंकि भगवान ने ये नहीं कहा है कि मैं सिर्फ ये उपदेश गुरु लोग खाली बोलेंगे, करेंगे शिष्य लोग, ऐसा थोड़े है, वो सबके लिए है। भगवान कहते हैं इंद्रियों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, इंद्रियों को उनके विषय या उनको आनंद प्रदान करना नहीं होगा भौतिक वस्तुओं से। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके बाद अनेक भौतिक कष्ट प्राप्त होते रहते हैं। ऐसा भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती। वास्तव में है भी ऐसा ही। भौतिक प्रगति के इस प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुएं हैं जो देहात्मक बुद्धि से प्रसूत हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है। अब अगर हम देखें तो क्योंकि हमें ये मनुष्य जन्म मिला है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, लेकिन इस संसार में मनुष्य को यदि देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा समय वो अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगाता है। ऐसी ऐसी वस्तुओं को प्रोटेक्ट करना, ऐसी वस्तुओं को जिससे हम अच्छे लगें और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करें, जबकि हमें ये सोचना है कि हम किस तरह से अपने आप को कृष्ण की ओर आकर्षित कर सके। इसके बारे में अगर हम लोगों की ओर ही लोग आकर्षित होते रहेंगे, अगर हम ऐसा कोई जीव जो है, व्यक्ति मनुष्य जो है, वो सिर्फ अपनी ओर लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करता रहेगा तो वो खुद कब भगवान की ओर आकर्षित होगा? फिर तो उसका सारा समय व्यर्थ ही हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सुंदर बनाकर प्रस्तुत करने के लिए ताकि लोग हमारी ओर आकर्षित हों। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो है वो मनुष्य की शक्ति का व्यर्थ ही नष्ट हो रहा है। मनुष्य के अंदर कितना पावर है, वो कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है, वो कृष्ण की शरण में आकर कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो अपनी इस सारी शक्ति को जाया कर रहा है केवल इस देह को सजाने के लिए, और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता। यदि ये करेंगे तो क्योंकि देह के अंदर आसक्ति बनी हुई है तो केवल देह के विचार आएंगे कि मैं कैसे अच्छा लगूं, लोग मुझे किस तरह से अच्छे कमेंट्स दें, तो देह की ओर ही इतना ज्यादा आकर्षण हो जाएगा तो आत्म साक्षात्कार तो प्राप्ति नहीं होगा, जो मानव की प्रमुख आवश्यकता है। क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है आत्म साक्षात्कार करने के लिए, तो फिर अगर हम भौतिक वस्तुओं की ओर इतना सारा समय देंगे, इतना सारा ध्यान देंगे, तो फिर जो प्रमुख वास्तविक लक्ष्य है, जो प्रमुख आवश्यकता है, वो तो कभी प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा उदाहरण श्री प्रभुपाद जी देते हैं। अब देखो, मनुष्य जो होते हैं संसार में आए हैं, भगवान कहते हैं एवं प्राप्य भजत स्वमाम, जन लिया है तो मेरा भजन करो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये श्री प्रभुपाद जी ने लिपस्टिक की उदाहरण दिए कि वो लिपस्टिक लगाते हैं, मतलब अपने आप को सुंदर बनाने के लिए चक्कर में होते हैं। और दूसरे लोग क्या करते हैं, श्री प्रभुपाद जी दूसरा बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। वे कहते हैं कि दूसरा उदाहरण है चंद्रमा तक पहुंचने के प्रयास में शक्ति का उपव्यय। अब कुछ लोग होते हैं साइंसदान, वो बोलेंगे इस ग्रह में जाएं, चंद्रमा ग्रह में जाएं, उस ग्रह में जाएं, और यहाँ तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है। क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच भी लिया जाए तो भी जीवन की समस्या हल नहीं होने वाली है। भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं क्योंकि उनके पास भौतिक संपत्ति नहीं होती है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत खास बात बताने वाले हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो जो साइंस अभी बहुत सारी इन्वेंशंस भी कर रही है कि हम यहाँ जाए वहाँ जाए, अगर हम किसी बड़े से बड़े, आज देखो हर किसी का मन होता है कि हम अमेरिका में जाएं, हम यूरोप में जाएं, हम रशिया में जाएं, हम दुबई में जाएं, अलग अलग कंट्रीज में जाके एंजॉय करें। तो एंजॉय कौन कर रहा है, यह भौतिक शरीर ही तो कर रहा है। यदि केवल भौतिक शरीर के लिए अपने इस मानव जन्म को समाप्त कर दिया तो फिर क्या फायदा हुआ, क्योंकि जो वास्तविक आवश्यकता है, जो वास्तविक लक्ष्य है, वो तो प्राप्त हो ही नहीं रहा है। तो क्या है, केवल और केवल हमारी शक्ति का उपव्यय, यानी उसको जाया किया जा रहा है। क्योंकि ये सब वस्तुएं यदि प्राप्त भी हो जाती हैं, कोई चंद्रमा पर भी पहुंच जाता है, तो भी जीवन की वास्तविक समस्या हल नहीं होती है। इसीलिए भगवान के भक्त जो होते हैं वो सदैव अकिंचन कहलाते हैं, क्योंकि वो कभी भौतिक संपत्ति की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, ना ही उसको जमा करना होता है और ना ही उससे आनंद लेना होता है। ऐसी संपत्ति प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिफल है, वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं।
आध्यात्मिक शक्ति है जीव, और जीव का आनंद केवल कृष्ण प्राप्ति में है, कृष्ण भक्ति में है। लेकिन वो जीव आत्मा जो है वो भौतिक शरीर के अंदर जब आ जाती है तो वो विस्मरण हो जाता है अपनी वास्तविकता का, तो वो सारी की सारी शक्ति जो है वो किस में खर्च कर देती है, केवल भौतिक आनंद को प्राप्त करने में। अतएव हमारे पास जितने ही कम भौतिक प्रतिफल होंगे उतना ही अधिक अवसर आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। अब यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी ने पहले वाले श्लोक में जैसे कुंती महारानी ने कहा ना कि मुझे भौतिक वस्तुएं नहीं चाहिए, ये ऐश्वर्य ज्ञान और भौतिक जितनी भी फेमस है, भौतिक जितना सब कुछ हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, उसके कारण हम उसमें बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए अगर हम देखें कोई गरीब व्यक्ति होता है ना, जो एक दिन में यदि 150 कमाता है, उसको अगर आप बोलोगे कि भाई आज दुकान बंद कर दो, आज हम भागवत कथा रख रहे हैं, हमारे पास भागवत कथा श्रवण करने के लिए आओ, तो हो सकता है वो बोले कि चलो ठीक है 100 रुपये कमाता हूँ, आज भले है ना भागवत कथा सुन लेता हूँ भगवान का नाम, तो वो बंद भी कर ले, हो सकता है। लेकिन जो एक दिन में 1 करोड़ रुपये कमाता है ना, उसको आप यदि बोलोगे ना कि आज भागवत कथा है, आज हमने घर में कीर्तन रखा है, आप आओ, तो उसको लगेगा मैं दुकान कैसे बंद कर सकता हूँ, 1 दिन में 1 करोड़ रुपए का लॉस होगा मुझे, मैंने तो जितना जितना वो भौतिक वस्तुओं में शिकंजे में जितना जितना हम जकड़े जाएंगे ना, उतना उतना हमें फिर आध्यात्मिक प्रगति के लिए कोई भी समय प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं अतएव हमारे पास जितने ही कम भौतिक प्रतिफल होंगे उतना ही अधिक अवसर आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। भगवान का भौतिक कार्यकलाप से किसी तरह का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, उनके सारे कर्म इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से राग विहीन होते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जैसे कुंती महारानी ने बताया निवृत्त गुणवृत्त है कि ये भौतिक वस्तुएं जो हैं उनसे आप बिल्कुल निवृत्त हो, उनसे आपका कोई संबंध नहीं है। भगवान का संबंध गोपियों के साथ या श्रीमती राधा रानी के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी भौतिक दृष्टि है ना, तो हमको भौतिक ही दिखता है, हमें ऐसा लगता है कि कहीं पर एक लड़की और लड़के के अंदर कोई संबंध है तो केवल और केवल काम वासना का ही हो सकता है। लेकिन भगवान के अंदर यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी तरह का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, वो तो शरीर है ही नहीं ना, तो शरीर का कोई आनंद वो प्राप्त कर नहीं रहे होते हैं, उनके सारे कर्म इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक होते हैं, वो दिखा रहे हैं आध्यात्मिक आनंद कैसा होता है। भौतिक आनंद और आध्यात्मिक आनंद में कोई सिमिलरिटी नहीं होती, वो बिल्कुल अलग होते हैं और प्रकृति के गुणों से राग विहीन होते हैं। ऐसा नहीं है जैसे संसार में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें या तो रजोगुण या तमोगुण या सत्वगुण होता है ना, लेकिन जो आध्यात्मिक कार्य होते हैं ना वो विशुद्ध सत्व गुण के अंदर होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनके सारे कर्म यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोभाव भी दिव्य है, और जो इसे ठीक से जान लेता है वह इस जगत में फिर जन्म ना लेकर भगवत धाम को वापिस आ जाता है। भगवान जैसे श्रीमद् भगवत गीता में बताते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वादेवं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। श्री रूपा जी बोलते हैं कि भवरोग का कारण प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है, यह लालसा प्रकृति के तीनों गुणों की अंतः क्रिया के फल स्वरूप है, और ना तो भगवान ना ही भक्तगण ऐसे मिथ्या भोग के प्रति आसक्त होते हैं। ये भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना और प्रभुत्व जताने की लालसा, ये सब भगवान के अंदर नहीं होता है, भगवान का सब कुछ है, लेकिन भगवान भौतिक वस्तु की किसी भौतिक संसार की किसी वस्तु के साथ कोई आसक्ति नहीं रखते हैं। और इसी प्रकार उन्हीं के गुण क्योंकि उनके भक्तों में होते हैं, इसी किसी भी भौतिक वस्तु की ओर उनका कोई आकर्षण ही नहीं होता है। इसीलिए अतएव भगवान तथा भक्त निवृत्त गुणवृत्त वृत्ति कहलाते हैं। यहाँ पर जो कुंती महारानी ने बताया है, नमो किंचन वृत्ताय निवृत्त गुणवृत्तये, तो श्री प्रभुपाद जी उसके विषय में बता रहे हैं कि पूर्ण निवृत्त गुणवृत्ति तो परमेश्वर ही है, जो प्रकृति के गुणों द्वारा कभी भी आकर्षित नहीं होते, लेकिन जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें से कुछ माया के मोहाकर्षण में फंस जाते हैं। चूंकि भगवान भक्तों के धन हैं और भक्तगण भगवान के धन हैं, अतएव भक्तगण निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। अब यहाँ पर बताया नमो किंचन वित्ताय कि आप क्योंकि अकिंचन भक्त के धन हैं और अकिंचन भक्त के धन भगवान है, और भगवान का धन क्या है जानते हो? भगवान का धन है वो अकिंचन भक्त, जो भौतिक वस्तुओं का परित्याग करके केवल भगवान को ही समर्पित होता है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि भगवान भक्तों के धन है और भक्तगण भगवान के धन है, अतएव भक्तगण निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे हो जाते, तो वही क्वालिटीज मिल जाती है भक्त को। यह सीधा साधा निष्कर्ष है। ऐसे अनन्य भक्त हैं, भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न है जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने के लिए या उत्सुकता तथा कल्पना के कारण भगवान के पास जाते हैं। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी दो भक्तों के सेंटर में कंपेयर बता रहे हैं कि एक तो अनन्य भक्त होते हैं, यानी कि उनकी इच्छा क्या होती है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई भी इच्छा नहीं होती है, केवल कृष्ण को प्रेम का प्राप्त करने के लिए कृष्ण के पास जाते हैं। लेकिन श्री प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से विभिन्न होते हैं। मिश्रित मतलब वो भगवान के पास तो जाते हैं, लेकिन क्यों? जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने के लिए या उत्सुकता तथा कल्पना के कारण भगवान के पास जाते हैं। अनन्य भक्त तथा भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है। जो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, जिनका आकर्षण और जिनकी आवश्यकता केवल भगवान को प्रसन्न करना होता है, तो वो भगवान के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित करते हैं कि कृष्ण मुझे तुम्हारे अतिरिक्त और कोई सुख नहीं आता। जैसे कुंती महारानी कह रही थी कि विपदः संतता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भवदर्शन, क्योंकि विपत्ति के द्वारा आपके दर्शन प्राप्त होते हैं, तो मेरे लिए उससे बड़ा और कोई संकट हो ही नहीं सकता कि आपके दर्शन प्राप्त न हो। तो भले ही बहुत 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 मेरे ऊपर कष्ट आते रहे, विपत्तियां आती रहे, क्योंकि इसके द्वारा ही मुझे आनंद आ रहा है, क्योंकि इन विपत्तियों के कारण ही तो आप हमें बचाने के लिए आ रहे हो। तो मैं चाहती हूँ बार बार दुख मिलता है, वो ये नहीं कह रही है कि कृष्ण आप मुझे सुखी कर दो। यानी कि वो भक्त नमो अकिंचन वित्ताय, यानी कि जो अकिंचन होते हैं उन्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। हृदय के अंदर केवल एक ही इच्छा होती है कि मुझे कृष्ण का दर्शन होता रहे, कृष्ण का संग, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता रहे। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अनन्य भक्त तथा भगवान का एक दूसरे का साथ दिव्य संबंध होता है, लेकिन अन्यों से भगवान को कुछ लेना देना नहीं होता है, अतएव आत्माराम या आत्मतुष्ट कहलाते हैं। भगवान अनन्य भक्तों के साथ तो अपना संबंध जोड़ते हैं, लेकिन दूसरों को क्योंकि वो प्रेम नहीं चाह रहे हैं, वो भगवान को दे देते हैं भगवान उनको जो वस्तु चाहिए होती है, जो दुख दूर करना होता है वो कर देते हैं, धीरे 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 वो भक्तों का संग करते हैं, नाम जप करते हैं तो हृदय शुद्ध हो जाता है। लेकिन जब तक जीव अनन्य भक्ति के स्थान तक नहीं आता, जब तक जीव को यह रियलाइज नहीं होता कि कृष्ण के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण के अतिरिक्त मुझे किसी में आनंद नहीं आता है, तब तक कृष्ण खुद को उसे नहीं सौंपते। ये समझना पड़ेगा हमें कि हमें क्या चाहिए, क्या हमें भौतिक वस्तुओं को और भौतिक कष्टों को दूर करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है या कृष्ण प्राप्ति लक्ष्य है। तो जल्दी से जल्दी इन भौतिक वस्तुओं से हमें आसक्ति को समाप्त करके कृष्ण की ओर अपनी आसक्ति को जोड़ना होगा, क्योंकि जब तक कृष्ण को पूरी रीत से हम सरेंडर नहीं करते हैं, पूरी तरह से जब हम कृष्ण की प्राप्ति ही अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बना देते, जब तक अन्य अभिलाषा को शून्य नहीं कर देते, तब तक कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी। फिर वो भौतिक वस्तुएं जिसके कारण हम रोज रोज भगवान के पास जाते ना, अब क्योंकि आकर्षण बना हुआ है, भगवान ये दे दो वो दे दो वो दे दो, आकर्षण तो बना हुआ है। तो ये जो डबल पॉलिसी चलाते ना कि भौतिक वस्तु भी चाहिए आप भी चाहिए, तो भगवान बोलेंगे ठीक है मैं मेरे द्वारा तुमको भौतिक वस्तु तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन जब तक तुम केवल मेरे पास आने के लिए चेष्टा नहीं करोगे, तुम्हारी इच्छा केवल मुझे प्राप्ति की नहीं होगी, तब तक तुम्हें मेरी प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अतएव समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी, सॉरी कुछ यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अनन्य भक्त तथा भगवान का एक दूसरे के साथ दिव्य संबंध होता है, लेकिन अन्यों से भगवान को कुछ भी लेना देना नहीं होता है, अतएव वे आत्माराम या आत्मतुष्ट कहलाते हैं। आत्माराम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी भगवान के व्यक्तिगत तेज में, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, एकाकार होते हैं, लेकिन भक्त तो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद आठवां अध्याय, जिसका शीर्षक है कुंती महारानी द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। अत्यंत ही सुंदर कुंती महारानी के श्लोक, उनकी प्रार्थना हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो एक बार हम शुरू से कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को रीड करेंगे, ताकि हम आज के श्लोक को अच्छे से समझ सकें। कुंती महारानी कहती हैं, कुंतीवाच नमस्ते पुरुषं त्वाध्यं ईश्वरं प्रकृति परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितं माया जवनिका छन्नम् अज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसि मूढ़दृश्या न तो नाट्य धरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय
नमस्ते पंकजांग्रये यथा ऋषिकेश कलीन देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मोहुर्विपत्कणा विशान्महात्म्ये पुरुषाददर्शना असत्सभाया वनवासकृच्छ्रिता मृदे मृदे नेकमाहा रथास्त्रतो द्रोण्यास्त्रतश्चास्महारे विरक्षिता विपदः संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनं। हे भगवान, मैं चाहती हूँ कि सारी विपत्तियाँ फिर फिर आए जिससे हम आपका पुनः पुनः दर्शन कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का यह अर्थ है कि हमें बारंबार जन्म मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भीर एदमान मध पुमान नैवार हत्य विधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम्। अर्थात, हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। यहाँ पर कुंती महारानी बता रही है जो भौतिक दृष्टि के पास, दृष्टि से जिसके पास इतना ज्यादा वैभव नहीं होता है, धन नहीं होता है, कोई अच्छी पोस्ट नहीं होती है, वो आसानी से आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और आप उन्हें सरलता से प्राप्त भी हो जाते हैं। जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। जिसके पास बहुत सारी भौतिक वस्तुओं प्राप्त करने के लिए बहुत उसके जीवन में उपद्रव होगा, बेचैनी होगी, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, ये सीखना है, वो करना है, तो फिर वो एकनिष्ठ होकर भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करेगा और फिर वो पहुंच भी नहीं सकेगा, क्योंकि उसने एक लक्ष्य नहीं बनाया ना अपने जीवन का। उसी बात को आगे लेती हुई कुंती महारानी कहती हैं, नमो अकिंचन वित्ताय। अब उन्होंने अपना मनोरथ बताया भगवान को कि हमें भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल आपके दर्शनों से ही आनंद आता है। तो क्योंकि दर्शन विपत्तियों के द्वारा होते हैं, तो भले ही भौतिक वस्तुएं हमें भौतिक इज्जत, ये जन ऐश्वर्य श्रुति वैभव वो सब प्रदान नहीं करो, हमें सदैव विपत्तियों में रखो और अपनी अपने इस मनोरथ को बताने के बाद वो फिर से नमस्कार करती हैं। नमो अकिंचन वित्ताय। अकिंचन वित्त, अकिंचन वित्त मतलब धन जो अकिंचन है उनका धन एकमात्र आप है। अब देखा जाए तो धन में जीवों की बहुत ज्यादा आसक्ति होती है। जिसके पास धन होते हैं ना, धन होता है, वो क्या करता है, अपने शरीर की भी परवाह नहीं करता। धन प्राप्त करने के लिए वो पूरा दिन रात काम करते हैं, अपने शरीर की स्वस्थ रहने का भी प्रयास नहीं करते, बस ज्यादा से ज्यादा काम करना है क्योंकि उससे मुझे धन प्राप्त होगा। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर कुंती महारानी कहती हैं कि जो अकिंचन होते हैं, अब अकिंचन का वैसे मतलब क्या होता है, निर्धन, लेकिन यहाँ पर अकिंचन शब्द के साथ भक्त को जोड़ा गया है। ऐसे भक्त जो भौतिक दृष्टि से निर्धन है, अकिंचन है, परंतु वो भगवान से प्रेम करते हैं,
ऐसा नहीं है कि कोई भी झोंपड़पट्टी में रहेगा या कोई भी भिखारी होगा, वो भी तो अकिंचन हुआ ना, तो उसका भगवान वित्त नहीं है। वास्तव में जिसके पास कोई धन नहीं है लेकिन वित्ताय, मतलब उसका धन क्या है, भगवान ही केवल उसका धन है। भगवान के अतिरिक्त और उसके पास ना कुछ है और ना ही किसी की इच्छा करता है, इसको कहा जाता है नमो अकिंचन वित्ताय, कि वो भक्त जो केवल आपको ही अपना धन मानते हैं और वो आपको और आप भी उनके धन है। भगवान ऐसे भक्त का धन क्या है, भगवान, और भगवान के धन क्या है, ऐसे अकिंचन भक्त। तो भगवान के परम धन जो है वो भक्त ही होते हैं, वो अपने भक्तों को बहुत ही प्रेम से रखते हैं, अपने भक्तों का। भगवान अर्जुन को कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानीह नमे भक्तः प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र निश्चय पूर्व घोषणा कर कि मैंने अपने भक्तों का नाश होने कभी नहीं दूंगा। अर्जुन पूछे कि भगवान आप खुद ही घोषणा क्यों नहीं कर देते, मुझे क्यों बोल रहे हो? तो कृष्ण कहते हैं मैं घोषणा करता हूँ तो जब मेरा भक्त अगर उसके विपरीत कोई घोषणा करता है तो मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देता हूँ। कभी मैं घोषणा करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म जैसा परम भक्त जब ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं उठवा के रहूंगा तो मैं उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देता हूँ। लेकिन तुम अभी अपनी प्रतिज्ञा कभी भी नहीं तोड़ते हो, इसलिए तुम घोषणा करो, तुम ये प्रतिज्ञा लो कि कृष्ण कभी भी अपने भक्त को नाश नहीं होने देते। अब देखो यहाँ साधारण संसार में जो हमारा धन है वो भले ही हमें इतना प्रिय होता है लेकिन फिर भी हम उसको नष्ट करते हैं, खर्च करते हैं ना, भले ही अपनी और खुशियों को प्राप्त करने के लिए। जैसे अगर हम बीमार हो जाते हैं, धन हमें प्रिय है लेकिन फिर भी हम डॉक्टर को देते हैं ना, वो धन दे देते हैं, इसके अतिरिक्त भी कोई चीज खरीदनी होती है, घर के लिए कोई फर्नीचर खरीदना होता है, किसी को घर लेना होता है, गाड़ी लेनी होती है, या कुछ भी लेना होता है, तो धन भले हमने बहुत ही प्रयास से कमाया है लेकिन हम उसका नाश करते हैं ना, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं नमे भक्त प्रणश्यति। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं उतना प्रेम हम अपने धन से भी नहीं करते हैं। तो भगवान कितना संजो कर रखते हैं, कितना प्रेम से अपने भक्तों कि कभी भी उनके ऊपर कष्ट नहीं आने देते हैं। तो आप नमो अकिंचन वित्ताय, आप अकिंचनों के धन हैं। निवृत्त गुण वृत्तय, निवृत्त गुण वृत्तय मतलब जितने भी भौतिक गुण हैं, अर्थात जिनके द्वारा हम धर्म अर्थ काम ये सब प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं वो सब समाप्त हो जाए। अब भगवान जो है वो इन सब प्रपंचों से परे हैं, निवृत्त गुण वित्ताय। तो उसी तरह से भगवान के जो भक्त होते हैं ना वो भी इन भौतिक वस्तुओं की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए नहीं जीते हैं, तो वो केवल भगवान के आनंद के लिए जीते हैं। वो किसी भी भौतिक, निवृत्त गुण वित्ताय का मतलब होता है भगवान के भक्त किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आकर्षित नहीं होते हैं, भौतिक कामना नहीं करते हैं, स्वर्ग की कामना नहीं करते हैं, और इस भौतिक जगत के धन या वैभव इंद्रिय तृप्ति की कामना भी उनकी समाप्त हो जाती है। इसको कहते हैं निवृत्त गुण वृत्ति, यानी कि जो भी भौतिक कामनाएं हैं वो सारी उसकी समाप्त हो जाती है। इंद्रियों में स्वाभाविक ही इच्छा रहती है भौतिक भोग करने की, परंतु जब किसी जीव को ज्ञान प्राप्त होता है ना थोड़ा, तो उनको ऐसा लगता है कि भौतिक भोग बहुत थोड़ा है ना यहाँ पर, क्योंकि हमें शरीर भी थोड़े समय के लिए मिलता है और हमारा ये शरीर जो है वो भौतिक भोग को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ग्रहण नहीं कर सकता है। तब ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या करता है जीव कि यहाँ क्योंकि भौतिक जगत में सुख इतना बड़ी क्वांटिटी में प्राप्त नहीं हो रहा है तो क्या करना है, स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में यही भौतिक इंद्रियों का सुख होता है, परंतु बहुत बहुत क्वांटिटी में आप उसको यूज कर सकते हो अपने शरीर अपनी इंद्रियों पर। परंतु अब देखा जाता है इस संसार में अब की तो लोगों को स्वर्ग जाने की भी इच्छा नहीं होती है ना, स्वर्ग में जाएंगे, अच्छे धर्म का कार्य करेंगे, ये बहुत ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिससे हमें नरक में जाना पड़े। अब यहाँ पर स्वर्ग में जाकर आनंद प्राप्त करने के लिए जीवों की इच्छा नहीं होती, बल्कि किस चीज की इच्छा होती है, बोलते हैं अभी मैं विदेश में जाऊंगा, है ना, वेस्टर्न कंट्रीज में जाऊं, दुबई में जाऊं, और है ना ये सिंगापुर में, रशिया में, इसी से कंट्रीज में जाऊं जहां पर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में मुझे भौतिक इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो। इसलिए जाते हैं ना कि हम अधिक अधिक से अधिक ऐसी जगहों पे जाएं। मतलब ये आज का जो जिसको कहा जाता है ना एजुकेटेड पर्सन, वो इतना अधिक डल माइंडेड हो गया है कि इसी पृथ्वी के क्षणिक सुख को चाहता है बस। स्वर्ग के विषय में तो उसको कोई ज्ञान ही नहीं है ना। पहले जमाने में क्या होता था, जीव स्वर्ग के लिए चेष्टा करता था। आपको मैं बताऊं कि महाभारत में कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए, और 100% सबको पता था कि मरेंगे, युद्ध में जा रहे हैं तो मर के ही आएंगे। जो महारथी होते हैं वो नहीं, जो जितने भी सेनापति हैं, जो जो छोटे सैनिक होते थे, उन सबको पता था कि हमारी आज नहीं तो कल मृत्यु हो जाएगी, लेकिन युद्ध क्यों कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ज्ञान था कि इस युद्ध में मरने वाला स्वर्ग में जाएगा। युद्ध में मरेंगे, धर्म युद्ध में जब युद्ध होता है तो फिर जब जो कोई किसी की भी मृत्यु होती है तो भगवान उसे स्वर्ग में डालते हैं। तो यहाँ पर इतने छोटे छोटे सिपाहियों को भी पता था कि हम स्वर्ग के लिए जी रहे हैं, स्वर्ग में जाएंगे तो फिर कौन ऐसी नरक जैसी जिंदगी को गुजारना चाहेगा। इस संसार में तो हर क्षण दुख है, वहां पर दुख का नाम और निशान भी नहीं है। लेकिन इस संसार में आज के जो ज्ञानी जिसको कहा जाता है, वास्तव में उन्हें स्वर्ग के विषय में कोई ज्ञान ही नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक सुअर होता है वो गटर में रहता है, और गटर में रहकर भी मल खाता है वहीं पर संतुष्ट होता है। उसको क्योंकि ये पता ही नहीं है कि आगरा का ताजमहल कैसा है, मैं जाके उसको देखूं, मुझे वहां पर रहने के लिए मिले, या प्रधानमंत्री का भवन कैसा होता है, काश मैं प्रधानमंत्री के भवन में जाकर एक रात नाइट स्टे कर सकूं। उसको पता ही नहीं होता है, उसको खाली क्या चाहिए, इस भौतिक गटर के अंदर ज्यादा से ज्यादा मल खाने के लिए मुझे चाहिए, उसकी संतुष्टि की सीमा इतनी है। तो उसी तरह से आज का मनुष्य, क्योंकि उसको आगे स्वर्ग के विषय में कुछ पता ही नहीं है, तो फिर वो क्या स्वर्ग में जाने के लिए बिल्कुल भी उत्साहित नहीं होते हैं। जैसे वो क्या चाहते हैं कि हमें इसी संसार में ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त हो। लेकिन यहाँ पर कुंती महारानी कहती है निवृत्त गुण वृत्त है, क्योंकि आप भौतिक गुणों से, भौतिक वस्तुओं के आनंद से बिल्कुल परे हो, तो फिर जो भगवान की भक्ति करते हैं तो उनके अंदर भी भगवान के गुण आ जाते हैं और भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाती है। तो यहाँ प्रश्न उठता है, ऐसा क्या है कृष्ण में कि उसके संपर्क में आते ही गुणवृत्ति समाप्त हो जाती है। तो कुंती महारानी बताती हैं, आत्मा रामाय, क्योंकि आप आत्मा राम हैं, अपने आप में ही रमते रहते हैं, अन्य जीवों या अन्य वस्तुओं की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब वो चाहते हैं, जब भगवान, तो अपने आप को ही राधा रानी के रूप में एक्सपेंड कर देते हैं, गोपियों के रूप में एक्सपेंड कर देते हैं, वो अपने से ही आनंद प्राप्त करते हैं। उनको आनंद प्राप्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। आपने जैसे अगर कहा जाए, आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसको विवाह करना हो और वो अपने ही से अपनी पत्नी को उत्पन्न करे, है ना, अपने ही से पत्नी को एक्सपेंड करे और 16,108 पत्नियां एक्सपेंड करके उन्हीं से विवाह करें। भगवान श्री कृष्ण स्वयं से ही बनते हैं और स्वयं से ही आनंद का जो साधन है वही अपने से ही निकालते हैं और अपने से ही अपने आप में आनंद रहते हैं। उनको किसी अन्य पर आधारित नहीं होता होना पड़ता है आनंद प्राप्त करने के। अगर हम इस संसार में देखें तो हम अपने में कभी भी आनंदित नहीं हो सकते। इवन एक व्यक्ति है, इसको एक बहुत बड़े महल में रहने दिया जाए और उसको कहा जाए तुम अपने आप आनंदित रहो, अकेले हो, कोई नहीं है तुम्हारे साथ, और तुम वहां पर आनंदित रह के दिखाओ, वो 1 घंटे में घुट जाएगा कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के बाद तो पागल हो जाएगा कि यहाँ पर कोई नहीं है, मैं कैसे आनंदित हो सकता हूँ। यानी कि लेकिन भगवान जो है वो सदैव अपने आप में आनंद, आत्मा रामाय, क्योंकि आप आत्मा में आनंदित हो इसलिए क्या हो, शांताय। भगवान का स्वरूप चिन्मय है, आनंदमय है। यह प्रकृति तो जड़ है, माया है, दुखमयी है। अनंत कोटि जीव माया में संतुष्टि खोज रहे हैं, परंतु भगवान इस भौतिक प्रकृति से कभी भी आनंद की उपेक्षा नहीं करते। आत्मा तो राधिका तस्य, शास्त्र कहता है वह राधिका जो है वो आपका ही स्वरूप है, आपका ही प्राकट्य है। इसे क्योंकि भगवान को किसी भी भौतिक वस्तु से कोई भी आकर्षण नहीं रहता है, इसीलिए कुंती महारानी कहती है आत्मा रामाय शांताय, क्योंकि आसक्ति नहीं है, राग नहीं है, तो फिर क्रोध भी नहीं होता, क्योंकि जहाँ आसक्ति होती है वहीं पर क्रोध होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई माता पिता अपने पुत्र से बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं ना, बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, तो वो हमेशा क्रोध में ही रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको आसक्ति होती है, तो फिर हर चीज पे उनको गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन अब किसी को ज्यादा आसक्ति नहीं होती है तो फिर वो इतने ज्यादा क्रोधित भी नहीं होते हैं, क्योंकि क्रोध को क्या कहा जाता है जानते हो, रागानुज, यानी राग का अनुज, कामानुज कहा जाता है, कि जो काम होती है ना आसक्ति, उसका छोटा भाई क्रोध है ना। भगवान भी कहते हैं ना कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगा संगाय च कामा कामात् क्रोधो विजायते। फिर काम प्राप्त होता है उसके बाद ही आपको क्रोध आना जाता है। इस संसार में जिस भी वस्तु का हम राग करते हैं, आसक्ति करते हैं, तो अवश्य वो हमारे पतन का कारण बनता है, हमारे क्रोध का कारण बनता है, और क्रोध से स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। लेकिन इस संसार के सुख के परे एक आसक्ति है, एक राग है, जो इस भौतिक आनंद या इस भौतिक राग के जैसा नहीं है। उसको क्या कहा जाता है, कैवल्य पतये नमः, जो भगवान के दाम का अत्यंत ही आनंदित सुख होता है। इस सुख, इसको देने का जो अधिकार है वो केवल भगवान श्री कृष्ण को है, और किसी को भी ये आनंद, जो आध्यात्मिक लोक, जो भगवान का गौलोक है, उसका आनंद देने का भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को भी अधिकार नहीं। वैसे तो त्रिवर्ग जो जितना भी है, स्वर्ग का आनंद या भौतिक जितनी वस्तुएं हम प्राप्त करते हैं, वो सब हमें भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। लेकिन ये स्वर्ग नर्क की जगत का जितना भी आनंद है ना, वो देवता भी दे सकते हैं। यानी कि यदि कोई देवताओं की पूजा करता है तो उनको ये भौतिक आनंद प्राप्त करा सकते हैं, क्योंकि भगवान इसीलिए कहते हैं भगवद गीता में कि वो देवता दे देते हैं, लेकिन मेरा ही दिया हुआ देते हैं। मैं एव ही तान ही तान, कि जो मैंने दिया है, भगवान ने बनाया है, उसी को लपेट कर दे देते हैं कि लो, क्योंकि उसके देवता के पास जाते तो देवताओं के पास इतना अधिकार होता है कि भौतिक वस्तुओं का आनंद जीवों को दे देते हैं। परंतु वैकुंठ का सुख, कैवल्य पतये, जो वैकुंठ का सुख होता है, जो भगवान के परम धाम में जो आनंद होता है, वो आनंद प्रदान करने का इनडायरेक्टली भी किसी और को अधिकार नहीं है। ऐसे भगवान जो कैवल्य आनंद प्रदान कर सकते हैं, भले यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बताया है कि कैवल्य का क्या मतलब है, निराकार आनंद, लेकिन भक्तों के लिए तो वो कृष्ण का धाम ही है ना। जैसे श्री प्रभुपाद जी ने अंतिम बताया है कि ऐसे अद्वैतवादी भगवान के व्यक्तिगत तेज में, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, एकाकार होते, लेकिन भक्त तो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। भक्तों के लिए वो कैवल्य आनंद क्या है, भगवान की लीलाओं का सुख, जिससे वो भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो कुंती महारानी कहती है कि ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ, ताकि मैं उन्हें मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हो। वो हमेशा हमें अपने आप में रमाए, हमें भी आपकी तरह शांत रहना है। भौतिक वस्तुओं, भौतिक सुख ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि हम आपकी भक्ति करके आपके धाम में आपके साथ आनंदित होना चाहते हैं। तो कुंती महारानी अत्यंत सुंदर प्रार्थना की, नमो अकिंचन वित्ताय, क्योंकि आप अकिंचनों के वित्त हैं, निवित्त गुणवृत्त ये, और इन भौतिक वस्तुओं से आप बिल्कुल परे हैं। भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके आनंदित नहीं होते, और आप आत्मा रामाय शांताय, अपने आप में ही आनंद प्राप्त करते हैं, अपने ही अंदर से आनंद, क्योंकि आप सच्चित आनंद भगवान हैं, आनंद का भंडार है, इसलिए शांताय, आप शांताय हैं। और कैवल्य पतये, और केवल आप ही जीव को वास्तविक आनंद यानी अपने धाम का सुख प्रदान कर सकते हैं, इसलिए नमः, इसे मैं आपको प्रणाम कर। तो यहाँ पर भगवान पूछ सकते हैं कि बुआ जी, अभी तो आप मुझे कह रही थी कि मैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय, कि देवकी के पुत्र हो, वासुदेव के पुत्र हो, नंद गोप कुमाराय, आप नंद के कुमार हो, तो अभी आप मुझे ऐसे बता रही थी कि मैं देवकी का छोटा सा पुत्र हूँ, और अभी आप मेरी इतनी इतनी स्तुति कर रही हैं, मैं तो आपका भतीजा हूँ, और आप मुझको क्या कह रही हैं, आत्मा रामाय शांताय। आत्मा राम कहते हैं, शांताय कहते हैं, निवृत्ति गुणवृत्त है, और यहाँ तक कि कैवल्य पतये नमः, कि जो भगवान का धाम है उसको, उसके भी पति आप हैं, तो फिर ये सब मेरा इतना ज्यादा आप इतनी बहुत ज्यादा स्तुति, अतिशय स्तुति क्यों कर रही हैं? तो कुंती महारानी आगे कल इसका उत्तर देंगी। कृपया आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।